जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री रामचंद्र भगवान की जय सगुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय स्वामी श्री कर्णपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अपनी माता को जो उपदेश दिया आप लोग वही श्रवण कर रहे हैं। चेता खल्व से बंधाय मुक्त चात्मनोमतम गुणेश रक्तम बंधाय रतम वापुन से मुक्त है। मन ही संसार के बंधन का और मन ही संसार की मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। कौन सा मन? तो कहा गुणेश सक्तम बंधाय। जो मन गुणों से बने हुए संसार का चिंतन करता है अथवा रजोगुणी तमोगुणी आदि गुणों से आवृत हो जाता है वो मन आपको बांधने का काम करता है। रतम वापन से मुक्त है। लेकिन जो मन अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति रति जिसके अंदर पैदा हो जाती है जिस मन में पैदा हो जाती है वही मन आपको छोड़ने का काम मुक्ति का काम करता है। बड़ी प्यारी बात है। कल हम चर्चा कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब स्मरण करते हो भगवान का आप जप करते हो चिंतन करते हो उसमें आप राहत महसूस करते हो हल्के हो जाते हो। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से जप करते समय नींद आती? ये साबित करता है कि आप कितने हल्के हो जाते हो ये साबित करता है कि आप कितने निश्चिंत हो जाते हो क्योंकि आदमी निश्चिंतता में ही तो सो सकता है। जब तक निश्चिंत नहीं होगा तब तक कहां से सोएगा। संसार का चिंतन करो तो तुम्हें सोने के लिए दवाइयां लेनी पड़े। दुनिया का चिंतन करो तो सोने के लिए डॉक्टरों से परामर्श लेना पड़े। लेकिन भगवान का भजन करो तो एक महात्मा थे वो तो कहते थे कि दवाई की जगह भगवान का नाम ही लिया करो नींद भी आ जाए काम भी बन जाए और शरीर के ऊपर कोई प्रतिकूल असर भी ना पड़े। रात में नींद ना आए तो आप माला लेके बैठ जाओ आएगी ही नहीं। एक महात्मा तो कहते थे कि गुजरात में था मैं तो वहां उन्होंने कहा कि मेरी कथा में एक सुविधा है। तो कहा क्या? बोले कथा में नींद बहुत आती है हमारी कथा में स्पेशल। उन संत ने कहा इसलिए जरूर आना। हाथ जोड़ के निवेदन है जिनको सोना हो वो यहां पहुंचे। तो गुणेश सत्तम बंधा है स्पष्ट निर्देश है। और मैंने कल कहा था कि आप जो आप सुनते हो उसको व्यवहार में अनुभव करो व्यवहार में देखो उस चीज को उस ज्ञान को उस उपदेश को आप व्यवहारिक बनाओ। गुणेश सक्तम बंधाय। जहां संसार के चिंतन करने पर संसार के कारण संसार की परिस्थितियों की वजह से आपके मन में विक्षेप पैदा हो आप तुरंत इस बात को याद करो कि देखो शास्त्र कितने सही है। संसार को याद करो तो परेशानी संसार को याद करो तो मुश्किल है और संसार छूट जाए तो आनंद ही आनंद। मैं एक कहानी सुनाया करता हूं शायद आपको सुनाया भी हो दोबारा सुन लो क्या फर्क पड़ता है। एक महात्मा एक ब्रह्मचारी थे निकले बाहर तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बारात जा रही है। ब्रह्मचारी थे पता नहीं था उनको कुछ पूछा उन्होंने कि ये क्या है घोड़े पर बैठा हुआ सजा हुआ कौन है? तो कहा ये दूल्हा है। वर है ये विवाह करने जा रहा है। विवाह क्या होता है तो लोगों ने बताया कि सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो पूर्व संबंध है दोनों का होता है, ऐसा समझाया। मन में समझ में आ गई बात। तो गांव में कुआं होता है, बनाया हुआ था, उसके ऊपर वो सो गए। आदमी जो सुनता है देखता है वैसे ही सपने देखता है, तो सपना देखने लगी। स्वप्न में देखा कि उनका भी विवाह हो रहा है, वे भी घोड़े पर बैठे हुए, उनको भी सजाया गया। विवाह हो के पत्नी घर पे आई, समय गुजरा। सपने में तो बहुत जल्दी सब घटित हो जाता, संतान भी हो गई। संतान हुई तो श्रीमती जी ने कहा कि जरा खिसकिए, हमको ये बच्चे को सुलाना है। ये सही में खिसक गए, धड़ाम से नीचे गिरे। जब कुआं में नीचे गिरे तो चिल्लाने लगे, बचाइए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, इसमें कैसे गिरेगा वो, पहले निकालो फिर बताते। निकाला तो कहा क्या हुआ, बोले मैंने देखा था और वही सोच करके सो गया, मेरी बात एक समझ में नहीं आई। तो लोगों ने कहा कौन सी, बोले सपने की पत्नी जब कुएं में गिरा देती है ऐसी क्या करती होगी। बात पत्नियों की नहीं, बात संसार की है, बात संसार की चिंतन की है। मेरा मतलब है कि जब संसार का चिंतन आप, शास्त्र ये कहते हैं कि संसार का चिंतन अगर सपने में भी हो जाए तो हानिकारक ही है, वहां पर भी तो मैं नहीं छोड़ता, वहां पर भी तुम उससे बच नहीं सकते, वहां इतना भयानक होता है। तो वास्तविकता में जानबूझ करके हकीकत में अगर वो चिंतन हम करें संसार का, तो निश्चित रूप से वो बांधने वाला क्यों नहीं होगा। गुणेशु सत्तम बंधाय रतम वापस से मुक्त है। और जब जहां जहां आपने परमात्मा का चिंतन किया है तब आप देखो आप बिल्कुल आप आरती करके पूरे होते हो, चित्त शांत होता है, हल्का होता है। ये साबित करता है कि ये गलत नहीं। और अगर इसी धारा को आप बहाते जाओ, सतत बहाते जाओ, अपने चिंतन को सतत वहां तक ऊंचाई तक लेते जाओ, तो ये झंझटें हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए, पूरी हो जाए। अहम ममाभिमान उत्थे काम लोभादि फिर मलई वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम सुखम समम। एक सवाल फिर पैदा होता है कि हमारी समझ में ये बात आ गई कि संसार का चिंतन अगर करोगे तो बांधने वाला होगा, और अगर परमात्मा का चिंतन करोगे तो बंधन से मुक्ति मिलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि हम सब जो सुन रहे हैं यहां, सबके मन में कहीं ना कहीं ये भावना धारणा रहती है कि हम मुक्त हो जाएं। देखो चाहे वो सामान्य तौर पर हो चाहे वो विशेष अवस्था में हो, ये कहीं ना कहीं भावना, इसलिए हम सुनने आते हैं, नहीं तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए सुनने आते हैं कि हमारी मुक्ति हो, हमारा कल्याण हो, वो आनंद हमको प्राप्त हो। अब लोगों की समस्या यह है कि हम चाहते तो हैं कि मुक्ति हो, लेकिन परमात्मा का चिंतन सहज नहीं होता है, कोशिश करते हैं तो भी नहीं होता है, प्रयास करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ऐसा नहीं है कि बात नहीं समझ में आई, मालूम पड़ गया और स्पष्ट है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है कि ये दो चीजें हैं, ये शक्कर है ये नमक है, हमारी समझ में आ गया कि हमें शक्कर चाहिए तो हमको उठा लेना चाहिए। लेकिन मन के अंदर में न जाने कौन सा आकर्षण नमक के प्रति छिपा हुआ है कि जानने के बाद भी वो छूट नहीं रहा है। हम जानते हैं कि संसार का चिंतन बांधने वाला है, लेकिन फिर भी संसार का चिंतन छूट नहीं रहा, यही हमारी सबकी समस्या है। क्या करें हम, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा वो समझ में नहीं आएगा, क्यों? बोले दरअसल बात यह है कि जब तक उस अवस्था को आप प्राप्त नहीं होगे तब तक आपके मन के अंदर के जो संस्कार है वो मिटेंगे नहीं, जब तक तब तक आपके अंदर संसार के प्रति आकर्षण बना ही रहेगा। अगर आकर्षण खत्म करना चाहते हो तो मन को वैसा बनाना पड़ेगा, भगवान कहते हैं। तो कहा कैसा बनाना पड़ेगा, बोले कुछ चीजें हैं वो समझ लो। अमे मानो थी काम लोभादि फिर मलई, कुछ दोष हैं जो हमारे मन के साथ में स्वाभाविक रूप से लग गए। एक मैं हूं, एक मेरा है, लोभ है, माया है, दुनियादारी है, मोह है, ये सब के सब मन के अंदर में स्वाभाविक रूप से चिपक गए। इसलिए जब तक ये रहेंगे तब तक आप सोचो कि मन अपने आप ये चिंतन करना शुरू कर दे, भगवान का स्मरण करना शुरू कर दे, मुश्किल है, नहीं हो सकता है। पहले ही इनको दूर करो, कैसे भी इनको हटाने की कोशिश करो। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन उसके अंदर में परमात्मा का चिंतन अपने आप होने लगेगा। बात बड़ी सीधी है, बात बड़ी सहज है, लेकिन उलझाने वाली भी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आपने ध्यान दिया होगा कि आपको मन शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है। याद है मैंने कहा था कि मन शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको भगवान का चिंतन करना है, अंधकार को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रकाश को लेकर के आना है और अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात फिर वही आ गई कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा भी तो नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा का चिंतन भी तो नहीं होगा, तब तक वो विवेक, तब तक वो ज्ञान भी तो नहीं मिलेगा। इसलिए मूल रूप में तो सवाल वही पैदा हुआ कि अंतःकरण को पहले शुद्ध करो। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, ये गलत होगा। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनकी बात मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास में और कहा कि मुझे रोग है, मैं परेशान हूं, क्या करूं। तो पीलिया और जॉन्डिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीलिया हो गया उसको। और उस रोग की ये खासियत है कि मिश्री भी खाओ तो कड़वी लगती, मिश्री। और हमारे पुराने जमाने में उस रोग की दवा भी यही है, मिश्री ही दवा है कि वही खाओ। तो कहा ये तो कड़वी लगती, बोले है मीठी, भले ही कड़वी लगे। बात समझना बहुत बढ़िया कि ये मिश्री कड़वी लगती है लेकिन है मीठी। तो कहा कड़वी क्यों लगती है, बोले कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि तुमको रोग है। अब उस मरीज ने, उस रोगी ने पूछा कि ये दवाई हमें कब तक खानी, ये मिश्री हमको कब तक खानी। तो कहा तब तक खाओ जब तक कि मीठी न लगे, ये बात तब तक खाओ जब तक कि मीठी न लगे। और उसके बाद बोले जब मीठी लगेगी तुमसे खुद ही नहीं छोड़ी जाएगी, तुम अपने आप ही खाओगे, फिर कहने की जरूरत थोड़ी। मेरा मतलब यह है कि जब तक मन के अंदर में अहंकार, ममता, मोह, लोभ, क्रोध आदि दोष दूर नहीं हो जाएंगे तब तक वो परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा। और लेकिन दवाई भी यही है कि वो दूर कैसे होंगे। अगर ये पूछवाक कि अहंकार कैसे दूर होगा, कि ममता कैसे दूर होगी, कि मोह कैसे दूर होगा, कि लोभ कैसे दूर होगा, तो उसकी दवाई क्या है। उसकी दवाई भी यही है कि भगवान का भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो। अब पूछो कब तक करें, जब तब तक करो जब तक ये उसमें रस ना आने लगे। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भगवान के नाम में बड़ा रस, भगवान के नाम में बड़ा आनंद। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं कि नाम लिया नहीं कि समाधिस्थ हो गए, डूबने लगे, नाचने लगे, नाम लेने से ही उनको प्रसन्नता होने लगी। तो लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, नाम स्मरण करने में, नाम में इतना आनंद, नाम में इतना रस। बोले हाँ बिल्कुल इतना ही रस है। तो कहा हम लेते हैं तो हमको आनंद क्यों नहीं आता, हम भी तो लेते हैं राम कहा लेकिन वो आनंद नहीं आता। जैसा आनंद हम सुनते हैं हमको लगता है कि कहानियों में है वो आनंद, खाली किताबों में है वो आनंद, आनंद वो वास्तव में है नहीं। बोले नहीं नहीं है। तो कहा हमको पता क्यों नहीं चलता है। बोले दरअसल हुआ ये कि कीड़ी चींटी, वो चींटी थी, वो गई शक्कर के पास और वहां उसने वो शक्कर को अपने मुंह में रखा। तो पास वाली चींटी से कहा कि ये तो नमकीन है शक्कर, इसमें तो नमक का स्वाद आ रहा है, शक्कर का स्वाद नहीं है। दूसरी वाली ने कहा नहीं नहीं, ये तो शक्कर ही है, तुम्हारे मुंह में कुछ और रखा है। अगर तुम पहले मुंह में नमक रखकर के शक्कर चखोगे तो तुम्हें शक्कर का स्वाद कहां से मिलेगा, वो तो शक्कर नमकीन लगेगी। तो पहले संसार अंदर में हमारे भरा पड़ा है ना, जब तक वो संसार चित्त में रहेगा तब तक नाम का रस हमें मिलेगा कैसे, नाम का आनंद हमें मिलेगा कैसे, परमात्मा चिंतन की आनंद की अनुभूति रसानुभूति हमें आएगी कैसे, कहां से आएगी। इसलिए आप जब करते जाइए, चिंतन करते जाइए बिना मन लगे भी। कल ही मैं किसी से कह रहा था तो कहा कि मन तो लगता नहीं है, फिर भगवान का भजन करने से फायदा क्या, लोग ऐसा बोलते हैं। हमने कहा कि दवाई खाने में भी मन नहीं लगता, खाते हो कि नहीं खाते हो, दवाई अच्छी लगती दवा बिना मन के खाते हो। मैंने उसे पूछा कि बिना मन के दवा खाने में वो दवा असर करती है कि नहीं करती, वो रोग ठीक करती है कि नहीं करती। तो कहां करती है। हमने कहा कि जब दवाई में इतनी ताकत है कि बिना मन के खाने पर रोग को ठीक कर दे तो भगवान के नाम में क्या उसे कम ताकत समझते हो। तुम बिना नाम बिना मन के भी करके तो देखो। गोस्वामी लिखते हैं भाव को भाव अलख आन आल सहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप कैसे भी परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए तो सही, करो तो सही, किसी भी तरह से करोगे वो तुम्हारा परिणाम अवश्य देगा। लेकिन सतत लगातार, ऐसे नहीं कि छोड़ छोड़ के करो। दवाइयां आप कैसे खाते हो कि आज एक दिन खा लेते हैं कि तीसरे दिन खा लेंगे कि आठवें दिन खा लें, ऐसा नहीं। रोज खाते हो जब तक कि रोग दूर ना हो जाए। और अगर एक दिन छूट जाए तो डॉक्टर कहता है अब तो फिर शुरू करना पड़ेगा, पूरा तुमको वो कोर्स होता है उनका, हाँ पूरा देना पड़ेगा, हाँ पूरा करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी ऐसा ही है, परमात्मा चिंतन भी, भगवत भजन भी ऐसा है कि इसको सतत रखो, जितना हो सके आप नियमित करो, जितना हो सके आप रोज ज्यादा से ज्यादा करो अनुभूति, जितना आप परमात्मा का चिंतन करोगे उतना ही आप संसार से दूर होगे। आप देखो कि आप यहीं बैठे हो सत्संग सुन रहे हो, जितनी देर तक आप मुझे सुनते हो उतनी देर तक संसार से दूर हो जाते हो, कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब हमें नहीं सुनते हो तो संसार के पास चले जाते हो। दो ही चीजें होती है यहाँ बैठे बैठे भी, दोनों होंगी कि जब सुन रहे हो तो आप परमात्मा तत्व के साथ हो, आध्यात्मिक बन गया उसी समय मन हल्के हो गए, और यहीं बैठे बैठे अगर आप संसार का चिंतन करो संसार को याद करो तो परेशान होते रहोगे, कथा चलती रहेगी आप परेशान होते रहोगे कि अरे अब क्या करेंगे, वहां कैसे होगा, ये कैसे होगा, यहीं बैठे बैठे सब घटित होता रहेगा। तो जितनी देर आप परमात्मा चिंतन करते हो उतनी देर स्वाभाविक रूप से आप परमात्मा के साथ जुड़ गए। और मैंने कल एक श्लोक कहा था कि ध्याय को विषय संगस्ते शुभ जाए थे। मैं बहुत जब छोटा था, बहुत छोटा था, तब गुरु महाराज ने तभी से कहा कि प्रवचन शुरू कर दो 11 वर्ष की उम्र से ही। हाँ तो सबसे पहले ये श्लोक मुझे बड़े प्रिय लगते थे और मैं बोला करता था, बड़े प्यार से बोलता था कि ध्याय तो विषयान पुंस संगते शुपजायते। हुआ क्या कि आपने विषयों का चिंतन किया तो विषयों का साथ हो गया, विषयों का साथ हुआ तो उनमें आसक्ति कामना प्राप्ति हो, मैंने प्राप्त करने की कामना जागृत हो गई, वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न होने के बाद में क्या हुआ, क्रोधात बहुत ही सम्मोह पैदा हो गया। बोले ये सम्मोह क्या है, सम्यक प्रकार नमो, जहां पर ये भेद ही खत्म हो जाए कि हमारे पिता हैं या हमारे माता हैं या हमारे गुरु हैं, सम्मान जहां खत्म हो जाता है। इसलिए क्रोध में आवेशित व्यक्ति अपने गुरु को भी गालियां दे दे, क्रोध में आवेशित व्यक्ति अपने माँ बाप को भी बड़ा नहीं समझता, वहां पर गालियां देने लगता है। एक सज्जन अपनी माँ को गालियां दे रहे थे, महात्मा ने कहा कि भाई तुम इनको माँ को गालियां क्यों दे रहे हो, ये तो सम्मान करने योग्य। बोले मेरी माँ है, मैं कुछ भी करूं। ये सम्मोह की अवस्था है कि जहां आप अपने अपनत्व समझ करके आप उनके साथ में गलत व्यवहार करने लगो, ये सम्मोह की अवस्था है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह के द्वारा जो आपके अंदर में ज्ञान के रूप में कुछ भी बैठा था, उपदेश के रूप में, शास्त्रों के रूप में जो कुछ भी था, वो सब खत्म हो गया, वो भी सब समाप्त हो गया। अब आपको ये भी याद नहीं रहा कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। पहले सम्मोह की अवस्था में आप अपने परिवार के संबंधों का निषेध करते हैं, और स्मृति विभ्रम की अवस्था में आप अपने शास्त्रों की जो हमारी आज्ञा है, धर्म की जो हमारी आज्ञा है, उसका भी निषेध कर देते हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब धर्म ही नहीं बचा तो बुद्धि कहां से बचेगी, जब धर्म ही स्मृति के रूप में हमारे यहां से समाप्त हो गया तो बुद्धि शेष कहां रही, वो भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति का मतलब क्या है, तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीते जी आदमी जानवर हो जाता है, पशु हो जाता है। लोग कहते हैं कि पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, मनुष्य और जानवर में फर्क क्या है, तो कहा एक ही फर्क है बुद्धि का, उसको भी आंख है, उसको भी कान है, उसको भी पैर है, उसको भी सारी इंद्रियां हैं जो हमारे हैं, लेकिन फर्क है एक, और वो फर्क है बुद्धि का। और यहां बुद्धिनाशात बुद्धि खत्म हो गई, तो फिर बोले दूसरे होंगे वो पाप करने वाले जो मरने के बाद पशु बने, दूसरे होंगे वे जो अधर्म करने के बाद में उनको दंड स्वरूप पशु बनाया जाए, लेकिन ये आदमी बिना शरीर के बदले यही जानवर बन गया, क्योंकि बुद्धि नाम की चीज खत्म हो गई, आवरण मनुष्य का रह गया लेकिन आदमी जानवर, ये प्रणिष्यति, ये पतन है। ये पतन कहां से आया, ध्याय तो विषय, खाली विषय का चिंतन करने से ये परिणाम हुआ। तो मैं छोटा था तो मैं बोला करता था, तो करना क्या है, हमने कहा विषयान की जगह भगवान को जोड़ दो खाली, ध्याय तो भगवान पुंस, बस पूरी कहानी बदल गई। विषय की जगह भगवान को जहां रखा पूरी कहानी बदल गई। परमात्मा का चिंतन करोगे तो एक निश्चित तथ्य है कि जिसका मन चिंतन करता है उसके साथ में जुड़ जाता है, और जब जुड़ेगा तो उसको पानी की अभिलाषा करेगा, और जहां उसको पानी की अभिलाषा किया, ये काम जो काम विषयों के लिए हो उसे राग कहते हैं, और जो काम परमात्मा को पाने के लिए हो वो भक्ति है, उसी का नाम भक्ति है। अब परमात्मा को पाने में जो चीजें विरोधी बनती हैं उसके प्रति आपको क्रोध आता है, तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के बीच में अगर कोई बाधा बनता है तो वो क्रोध जो होगा, वो होगा तो क्रोध, लेकिन संसार के लिए जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका नाम है द्वेष, और परमात्मा के लिए जो क्रोध उत्पन्न होता है उसी का नाम है वैराग्य। वैराग्य क्या है, छोड़ना, ये क्रोध ही है कि बस तुम हमारी चीज, हमारे इस पथ पे आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, छोड़ दिए। ये साधक अपने आप करता है, सहज करता है कि हमारा ये लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, इसको प्राप्त करने में जो जो बाधाएं उनको अपने आप छोड़ देगा। बोले नहीं, हमें वहां पहुंचना है, हमें तुम्हें नहीं देखना। इस तरीके से, इस तरह से अपने चिंतन को मजबूत करो, बार बार अपने मन को समझाओ। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं साधकों के लिए कि जब जब वो चिंतन करने के लिए बैठे, जब जब भी भगवान का स्मरण करने के लिए बैठे, अथवा जब जब अकेले बैठे, अपने आपने माताओं को देखा होगा कि कभी कभी अकेले बच्चों को लेकर बैठती हैं, खेलती हैं उनके साथ बातें करती हैं, बच्चा कुछ नहीं समझता है फिर भी बोलती हैं, वो बोलना उनका संस्कार बन जाता है बच्चे के अंदर में, ध्यान रखना। जैसे मदालसा ने बचपन में बोला तो देखो संस्कार ऐसा बना कि वो बच्चे महान बन गए। ठीक इसी प्रकार से हम साधकों को भी करना चाहिए कि जब अकेले हो मन के साथ बात करो, ये बात मन हमारा बेटा है समझो, उसको समझाओ, उसके साथ में खेलो, उससे बातें करो कि तुमने दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं देखी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों में से तुमने सबका भोग किया, लेकिन क्या तुम कहीं पहुंचे, क्या तुमने कभी अभी तक एक निष्कर्ष निकाला, कुछ तथ्य तुमने जाना, नहीं जाना, तो मेरी बात मानो और तुम भगवान का भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो। आप उसके साथ, और ऐसा मत समझना कि तुम एक बार कह दो कि वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार बात की और वो अब तुम्हारी गुलामी करने लगेगा, संभव नहीं है। तुम अपने बेटे को बार बार कहते हो कि बेटा देखो ये पिता है, ये माँ है, ये अमुक है, ये अमुक है, एक बार कहने से वो नहीं मानता है, एक बार कहने से वो नहीं समझता है, उसे तब तक कहलवाना पड़ता है जब तक कि वो खुद बोलना शुरू नहीं कर देता है, जब तक कि तुम्हें भरोसा नहीं हो जाता कि हाँ अब जान गया है, तब तक तुम लगातार कहलवाते हो, लगातार उसे सुनाते हो। ठीक इसी प्रकार से ये सत्संग किस लिए था, इसीलिए था कि तुम्हारे मन को बार बार सुनाई पड़े, लेकिन अब हो गया ये कि हम सुनते तो हैं लेकिन मन नहीं सुनता, इसलिए इसका भी उतना परिणाम नहीं मिल पाता। अब पहले ऐसा था, मैं कल एक बात कह रहा था, मैं बीच में छूट गया शायद, कि जो समर्पण है, समर्पण का अर्थ यही है, समर्पण जब गुरु के सामने आप करते हो तो समर्पण का अर्थ यही, शायद परसों कहा था जनक के सामने सुलभा के सामने जनक ने जो समर्पण किया, तो समर्पण का अर्थ यही है। हमारे एक संत है वो कहा करते हैं कि गुरु जी ने आपको कहा कि माला जप करो, तो कहा माला में क्या रखा है, लोग ऐसा बोलते हैं माला में क्या रखा है, हमें तो आत्मा को जानना है, माला में क्या रखा है। तो वहां उन संत ने बहुत बढ़िया कहा कि जब तुम अभी ये आज्ञा मान नहीं रहे हो तो मन से जब आज्ञा देंगे गुरुजी कि मन तुम यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, तब वो मन गुरुजी की आज्ञा कैसे मानेगा, वो सूक्ष्म आज्ञा तुम कैसे स्वीकार कर सकोगे जब स्थूल आज्ञा तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। कितनी प्यारी बात है। तो यहां समर्पण का मतलब है कि हमने मन को आज्ञा दिया, मन तुम यहां चलो। इसीलिए साधना है कि बस हमने ध्यान के द्वारा, लोग ऐसा ध्यान करवाते हैं कि पैर से शुरू करते हैं, घुटने तक आओ, घुटने से शुरू करते हैं, नाभि तक आओ, नाभि से शुरू करते हैं, कंठ तक आओ, हृदय का तक आओ, कंठ तक आओ, फिर नासिकाग्र के आगे यहाँ खड़ा कर दिया। ये मतलब क्या है कि आपको ये भरोसा हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि मन आपकी आज्ञा मान रहा है, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ कि यहाँ आ जाओ, और अगर मन वहीं रहा, हिला नहीं, तो इसका मतलब है कि अब मन आपके कंट्रोल में है, अब जहां जहां कहोगे मन आपकी बात मानेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आज्ञा चक्र में रहो और मन कहीं दूसरी जगह भटक जाए, तो इसका मतलब है कि अभी बहुत जरूरत है, अभी हमने सफर आधा भी तय नहीं किया है, अभी ये बच्चा नादान है, उच्छृंखल है, अभी हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे हाथ में, जरा सोचो कि घुटने की जगह है और यहाँ क्या बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र में अगर मन हमारी कहने पर नहीं टिकता है तो परमात्मा के ध्यान में मन हमारे कहने पर कैसे टिक पाएगा। ये तो रास्ता यहाँ से भी आगे है, ये तो स्थूल है, हमें सूक्ष्म लगता है लेकिन फिर भी स्थूल है। तो जब यहाँ नहीं टिक रहा है, यहाँ हमारी आज्ञा मन नहीं मान रहा है, तो वो इतना सूक्ष्म जगह पर हमारी आज्ञा मन कैसे मानेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा गुरु की आज्ञा मान करके उनके अनुसार चलो, तुम उनके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा मन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा, उतना ही पवित्र पावनता आती चली जाएगी। ये जो बाह्य साधन है ना, पूजा हुई, जप हुआ, ये जो साधन है, ये साधन अंतर पूजा की तैयारी है। जब तक तुम ये करके तैयार नहीं हो जाओ, ये पूजा इसीलिए थी कि तुम पूजा करते जाओ, ये इतनी हो जाए कि अंदर में वो पूजा घटित होने लगे, अंदर में होने लगे, लेकिन वो होता ही नहीं, वो बात दूसरी है, वो बात अलग है। तो वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम सुखम समम, तब ये कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन में वो पवित्रता आएगी, जिस दिन मन का वो पावनता आएगी, तब क्या होगा। तो कहा ऊपर जो कह चुके हैं, अत्यंतो परित्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च, सुख और दुख दोनों में सम रहने लगेगा, लाभ हानि दोनों में सम रहने लगेगा, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जयायत। ये जो भगवान कहते हैं, उस अवस्था को मन शुद्ध होने पर प्राप्त होता है, और बस तब उसके बाद तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतेः परम, तब वो जो गुरुदेव भगवान आत्म तत्व का वर्णन करते हैं, आत्म तत्व के विषय में कहते हैं, वो घटित हो जाता है। उन्होंने कहा तत्त्वमसि, जिस दिन मन शुद्ध हुआ, जिस दिन मन के अंदर में पवित्रता का भाव पैदा हुआ, और गुरु जी ने कहा तत्त्वमसि, तो शिष्य ये नहीं पूछता है कि इसकी व्याख्या क्या है, शिष्य ये नहीं पूछता है कि इसका मतलब क्या है, कि तत् का मतलब क्या होता है, कि तुम का मतलब क्या होता है। गुरु ने कहा तत्त्वमसि और यहाँ ये घटित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पवित्रता इतनी है, प्रकाश इतना है कि हमने अगर आपको पुस्तक दिया तो बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है, आप खुद ही पढ़ लोगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, बोलना पड़ेगा। अगर प्रकाश है, आप पढ़े हुए हैं, आपके अंदर में ज्ञान है और हमने ये पुस्तक दिया, तो ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये क्या है, आप देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक इसी प्रकार से चित्त के अंदर में जिस दिन वो पवित्रता पैदा होती है, जिस दिन वो निर्मलता आती है, और जहां गुरुदेव का उपदेश वो श्रवण किया, इसलिए हमारे शास्त्र, इसलिए हमारे महापुरुष इस बात को बार बार संकेत करते हैं कि गुरु के पास कौन जाए, कौन पहुंचे। गुरु के पास पहुंचने से साधन चतुष्टय का वर्णन है। पहले है? पहले आप साधन चतुष्टय से युक्त हो जाओ। मैं चकित रह गया जब मैंने पहली बार पढ़ा कि विवेक, वैराग्य, संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चार चीजें आपके अंदर में आनी चाहिए, ये साधन चतुष्टय है। तो फिर मैं सोचने लगा साधन चतुष्टय विवेक क्या है, तो कहा कि विवेक है कि सत और असत का विवेचन, सत्य क्या है और असत्य क्या है, बात समझना, विवेक क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका जो ज्ञान है, उसका जो विवेचन है, वही विवेक है। मालूम पड़ गया कि परमात्मा सत्य है, मालूम पड़ गया कि संसार असत्य है, ये विवेक हो गया। ठीक है, वैराग्य क्या है, बोले जो असत्य है उसको छोड़ देना, जो सत्य है उसको प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए चल पड़ना, ये वैराग्य हो गया। बात समझ में आ रही। षट संपत्ति क्या है, तो कहा कि शमदम, शम है यानी कि मन का निग्रह, दम है इंद्रियों का निग्रह। श्रद्धा क्या है, तो शास्त्र और वेदों के प्रति विश्वास, वही श्रद्धा है। समाधान क्या है, तो मन में जो विक्षेप है, चंचलता है, उसको शांत कर लेना, वही समाधान है। और क्या है, समदम श्रद्धा, तितिक्षा, तो तितिक्षा क्या है, बोले सार सहनम सर्व दुखानम प्रतिकार पूर्वकम, आगे आएगा मैं बताऊंगा। तो सारे कष्ट सुख दुख जो भी है उनको सहन कर लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, वही तितिक्षा है, बिना परेशानी के सहन करना। एक है कि कप रहे सहन कर रहे जबरदस्ती, वो नहीं, बिना परेशानी के, कैसे मैं बताऊंगा आगे आएगा। तो बिना परेशानी के सुख दुखों को सहन कर लेना तितिक्षा है। और क्या है, शब्द उपरति, उपरति यानी विषयों के प्रति कोई, एक तो होता है वैराग्य यानी छोड़ देना, और एक होता है कि विषय को ध्यान ही नहीं देना, उपराम हो जाना। उपराम का अर्थ उपेक्षा, उपेक्षा में भी शायद वो नजर आए, ठीक है जाने दो क्या है। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज गुरुजी से मिलने के पहले आना चाहिए, ध्यान देना, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। अभी गुरु मिला नहीं है, और मोक्ष, मोक्ष का मतलब है कि उस अपने आत्म कल्याण, ये चारों चीजें आपके अंदर में जब आ जाए तब आप गुरुजी के पास जाओ। जब मैंने पहली बार पढ़ा जब, तो सिर पकड़ लिया, मैंने कहा ये तो गजब की बात है, बिना गुरुजी के पास में गए सत और असत का विवेक कैसे होगा। पहली तो बात ये कि कैसे मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। फिर षट संपत्तियां ये हैं, ये कैसे आएंगी, ये कैसे चिंतन होगा, शमन कैसे करें, दमन कैसे करें, तो आदि आदि जो कुछ भी है, श्रद्धा आदि कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो कहा नहीं नहीं ये जब आप सत्संग करो, पहले सत्संग के द्वारा इन चीजों को समझो, अथवा गुरु बनाने के बाद भी, ऐसा नहीं है गुरु मिल गए उसके बाद भी आप मानते जाओ ये सारे साधन आपके अंदर में आ जाएं, तब ये तो पता चल गया कि सत्य ये है परमात्मा, ये पता चल गया, फिर गुरु की जरूरत क्या। मैं कह रहा हूं कि जब इतना सब कुछ बिना गुरु के ही साधक के अंदर में आ जाएगा, फिर गुरु की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। तो कहा जरूरत है, जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि जिसमें आपका चित्त पूरा योग्य बन गया, मालूम पड़ गया सत्य क्या है, मालूम पड़ गया असत्य क्या है, मालूम पड़ गया उपरति क्या है, श्रम क्या है, वैराग्य क्या है, सब कुछ हो गया, तैयार हो गए, तो ये तो पता चल गया कि संसार झूठा है, ये मालूम पड़ गया कि परमात्मा सत्य है, लेकिन वो सत्य परमात्मा है क्या, ये मालूम नहीं पड़ा है। इतना बोध हुआ है कि सत्य कुछ है लेकिन क्या, ब्रह्म सत्य है, लेकिन ब्रह्म क्या चीज है, कहाँ है वो ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का पता नहीं चल रहा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा, ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा, वो ब्रह्म कौन है, कहाँ है, वो अगर जानना चाहते हो तब उपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव आविगच्छेत्, उसको जानने के लिए गुरु वाक्य है। तो तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषमुपैति दिव्यम प्रोवाचताम तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम, ये गुरु करे। जहां साधक आया और गुरु जी ने बस उस तत्व का उपदेश कर दिया, तो यही भगवान कपिल कहते हैं, तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम अखंडितम, जो अखंडित तत्व है उस तत्व का वो अनुभव करने लगता है। जहां गुरुदेव ने कहा उसका बोध करवाने को इंगित किया, इशारा किया, और वो इशारा हमारी समझ में आता है। हम आपको दिखाते हैं कि वो देखो वो चांद है, तो आप उंगली देखते हो, चांद को देखते हो, लेकिन उंगली भी काम कर रही है, पहले उंगली को देखते हो और फिर उंगली को छोड़ देते हो, बस चांद काम कर रहा है, ठीक है, चांद को पकड़ लेते हो, ठीक है। इस प्रकार से वहां तक तुमसे कहा तो उन शब्दों को छोड़ दिया, वो जिसका वाचक है, वो जिसके विषय में कहना चाह रहा है, वो तत्त्वमसि क्या है, उंगली है। गुरुदेव ने तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा, उंगली के द्वारा निर्देश किया कि वो है, उसको पहचानो, वो तुम हो। और यहाँ साधक ने उसको पा लिया, साधक कहता है हाँ हाँ मैंने देख लिया चंद्रमा कहाँ है, कहाँ है, तो वो भी कहेगा वो है, वो भी उंगली दिखाएगा, वो भी उंगली दिखाएगा। तो साधक इसी प्रकार से गुरुदेव के द्वारा उन महावाक्यों को श्रवण करके उस आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कौन से आत्म तत्व को, जिसकी चर्चा ये कर रहे थे, योगाध्यात्म का पुंसा मतो निश्रेय में अत्यंतो परित्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च, जिस अध्यात्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या का वर्णन कर रहे हैं भगवान कपिल, उसी का कह रहे हैं कि वो इस तरह से प्राप्त होगी। सुख दुख से ऊपर जो आत्म तत्व की आनंद की अनुभूति है, वो अगर करना चाहते हो तो वो ब्रह्म विद्या है, उसी के द्वारा होगी। ब्रह्म विद्या की अनुभूति कैसे हो, ब्रह्म विद्या हमारे अंदर में कैसे उतरे, उसका उपाय बताया कि चित्त जब शुद्ध होता है और तब वो अंदर में आती है। अब सवाल फिर वही कि चित्त शुद्ध कैसे हो, और ये जो बताएगा कौन कि तुम आत्मा हो, ये कौन कहेगा कि निर्मल तत्व ये है, ये कौन बताएगा। तो कहा कि ये जानना है तो संतों का साथ करो, ये अगर तुम्हें अनुभव करना है तो महापुरुषों का साथ करो, वे ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। और यहाँ एक बात बहुत बढ़िया कहा, प्रसंगम जम पाशम आत्मनः कवयो विदु सहेव साधुष्कृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। दुनिया के किसी भी शास्त्र में आप पढ़ोगे तो एक बात, मैंने अपने जो आध्यात्मिक शास्त्र है उनमें अगर एक बात पढ़ोगे तो आपको निर्विवाद रूप से सुनने को मिलेगी कि आसक्ति बांधने वाली होती है। ठीक है, आसक्ति कैसी होती है, बांधने वाली होती है, कहीं भी आसक्ति हो तो बांधने वाली होती है। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि एक बात यहां ध्यान रखना, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, प्रसंग जो है, आसक्ति जो है वो बांधने वाली है, ऐसा लोग कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है सहैव साधुष्कृतो, अगर वही आसक्ति महात्माओं में हो जाए तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जहां संसार की आसक्ति, संसार के पदार्थों की अनुरक्ति तुम्हें बांधेगी, संसार में उलझन में डाल देगी, मुक्ति से दूर कर देगी, वही कहते हैं कि अगर वही आसक्ति, वही प्रेम, वही आदर भाव, सम्मान भाव संत में हो गया, महापुरुष में हो गया, साधु में हो गया, तो कहा मन से, मन से वो आसक्ति हुई तो कहा कि मोक्ष द्वार अपावृतम, तुम्हें फिर कुछ करना नहीं है, वो बंद दरवाजा मोक्ष का अपने आप खुल जाएगा। अपावृतम का मतलब है कि बंद दरवाजा खुल गया समझो, महात्माओं का साथ करने का मतलब है कि आप अपने मुक्ति का द्वार खोल रहे हो। यहाँ ये बात समझना कि मनुष्य शरीर क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है ये शरीर, मोक्ष का दरवाजा है, इसके द्वारा आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन दरवाजा मिल गया लेकिन बंद है वो, तो बंद दरवाजा किस काम का, दरवाजा तो है, बात समझ रहे हैं ना, दरवाजा तो है, निकलने की गुंजाइश है यहाँ, लेकिन अगर उस दरवाजे में आपने ताला लगा रखा है, दरवाजा वो फंस गया है, वो लॉक है, उसकी चाबी अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर दरवाजा होने का अर्थ भी क्या है। बहुत बड़ा हॉल है, मैं छोटा था और महात्माओं के बीच में बैठा हुआ था, महात्मा लोग जो विरक्त महापुरुष होते हैं वो कहानी सुना रहे, कहा कि एक हॉल है बहुत बड़ा विशाल, आपने भी सुनी होगी, महात्मा सुनाते ही है इसको, विशाल हॉल है, उसमें एक आदमी को छोड़ दिया गया आंख में पट्टी बांध करके कि जाओ निकलो, तो दीवार का सहारा लेकर के और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जब दरवाजा आया तो खुजलाने लगा, चलता फिर भी रहा तो दरवाजा निकल गया। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर है, इस संसार में हमको छोड़ दिया गया मुक्त होने के लिए, और ये एक द्वार है कि यहां से तुम निकल सकते हो, और हम भी आए और विषय भोग में जाकर के खुजलाने लगे अपने आप को, और वो तब तक निकल गया पता ही नहीं चला, फिर भटको। मेरा मतलब है कि दरवाजा है ये तो सच है, दरवाजा है ये सौभाग्य की बात है, दरवाजा है कि यहां गुंजाइश है, लेकिन वो बंद है तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं। तो खुलेगा कब, तो कहा जहां आप संतों का साथ करोगे तो उसकी चाबी भी मिल जाएगी तुम्हें, संतों का साथ करोगे तो उसको खोलने का सहारा भी मिल जाएगा, उसका उपाय भी मिल जाएगा कि कैसे खुलेगा। प्रसंग मजरम पाशम, ये संसार की जो आसक्तियां हैं ये पाश है, बांधने वाली है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सैव साधुष्कृतो मोक्ष पावृतम, वही आसक्ति अगर महात्मा में हो जाए तो बंद दरवाजों को खुलने वाली है। महात्मा कौन है वो भी मालूम पड़े कि संत किसे कहते हैं, और तब उन्होंने संतों के लक्षण बताने शुरू किए। इन संतों के लक्षणों को जानने के लिए जानने से पहले एक बात समझना कि संत कैसे होते हैं ये भी तुम्हें पता चलेगा और हमें संत कैसा होना चाहिए ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि संत ही उसको प्राप्त कर पाते हैं, जो संत हो जाते हैं वे ही उसे जान पाते हैं। तो मुझे लगता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको भी तो संत बनना पड़ेगा, आपको भी तो संत होना पड़ेगा। तो संत होने का मतलब ये कपड़े पहनना नहीं, संत होने का मतलब कोई बाह्य आडंबर नहीं, बाह्य वेशभूषा का मतलब नहीं। और यही यहां पर संकेत करेंगे कि आप संतों के लक्षण पढ़ना, और केवल यहां नहीं कहीं भी पढ़ना, रामायण में पढ़ना, भागवत में पढ़ना, महाभारत में पढ़ना, किसी भी उपनिषद में पढ़ना कि संत किसे कहते हैं, तो वहां आपको यही चिंतन यही लक्षण मिलेंगे कि संत का अर्थ क्या होता है, संत का मतलब क्या होता है। तो पूछा देवहूति ने कि संत किसे कहते हैं, पता तो चले। लोग जिस समय पर गुरु बनाने चले, जिस समय संतों का साथ करें, उस समय पर ये चीज देखें भी और अपने अंदर भी देखें कि हमारे अंदर में वो संतत्व तो पैदा हो रहा है कि नहीं। और विशेष करके संतों का लक्षण तो मेरे लिए ही है, विशेष करके संतों का लक्षण हमारे लिए ही है कि हम संत कैसे बने, हमारे अंदर में वो संतत्व के गुण कैसे आए। महाराज जी कहते हैं, अखंड जी महाराज, कि साधुता के गुण लाने नहीं पड़ते, सबके अंदर में होते हैं। साधुता के गुण लाने नहीं पड़ते, सबके अंदर में होते हैं। संसार के अवगुण लाने पड़ते हैं, किसी के अंदर नहीं होते, अंदर किसी के नहीं होते। तुम जबरदस्ती जीते हो उनमें, तुमको रस मिलता है उनमें, इसलिए उनको लेकर के आते हो। और बड़े प्रमाण के तौर पर वो कहते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप 24 घंटा झूठ बोलो, बोल सकते हो? मुश्किल हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप 24 घंटा गुस्से में रहो, क्रोध में रहो, आंखें तनी रहे, भय तनी रहे, बिल्कुल मत मुस्कुराइए, एकदम क्रोध में रहो, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर में स्वाभाविक रूप से बैठा नहीं है। आप 24 घंटे अगर मुस्कुरा कर रहना चाहो तो रह सकते हो, प्रसन्न रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन क्रोध में रहना चाहो नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सत्य बोल करके रहना चाहो तो जीवन भर रह सकते हो, लेकिन झूठ बोल के रहना चाहो तो 24 घंटा नहीं रह सकते, क्योंकि जी तुम्हारा दिल तुम्हारा अंतःकरण गवाही नहीं देगा, एक न एक बार तुम्हारे मुंह से सत्य निकलेगा ही निकलेगा ही, कोई कह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा असंभव है। और मैंने कहीं सुना कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं नास्तिक हूं, तो महात्मा ने कहा तुम नास्तिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि नास्तिक होना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नास्तिक हूं, मैं अधर्म को मानता हूं। तो कहा तुम झूठ बोल सकते हो? बोले बिल्कुल। तो कहा 24 घंटे ही नहीं बोल सकते हो? तुम बिल्कुल के दावा करते हो आदि आदि। तो उसने कहा नहीं, 24 घंटे नहीं, मैं 24 महीने बोल सकता हूं, मैं जीवन भर झूठ बोल के रह सकता हूं। महात्मा ने कहा छोड़ो भी, तुम 5 मैं प्रश्न पूछता हूं और 5 प्रश्नों में भी तुम झूठ नहीं बोल सकते, 5 में ही तुम सत्य बोलने लगोगे। बोले नहीं नहीं, अच्छा पूछ के देखिए। तो उन्होंने पूछा, पहला सवाल पूछा, कुछ भी, उसने झूठा उत्तर दे दिया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा कि बिल क्लिंटन, कुछ भी बोलना है बोलने को, तो क्या है, तुम कहां रहते हो? रहता था यहाँ इंडिया में। कहने लग गया मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ आदि आदि, कुछ भी बोलना है, कहां तक पढ़े हो? बिल्कुल मूर्ख हूं, झूठ बोल दिया। तो 4 सवाल पूछने थे, तो 3 सवाल हो चुके थे और तीनों में वो झूठ बोल चुका था। महात्मा ने कहा कि अब कितने सवाल रहे हैं? तो उसने कहा 1। कितनी प्यारी बात, हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं। झूठ बोलना तुम ओढ़ते हो, जबरदस्ती बैठे हुए हो पकड़ के। अच्छा वो 3 जो झूठ बोले उसने निश्चय करके बोले, सोच करके बोले कि मुझे झूठ बोलना ही है, सहज भाव में वो भी नहीं बोल पाता। और मैं दावा करता हूं कि अगर वो वहां पर भी सावधान रहता और महात्मा पूछते कि कितने सवाल रहे हैं, तो वो चुप रह सकता था, क्या जरूरत है बोलने की, लेकिन वो नहीं रहा, चुप रह सकता था। मैं मानता हूं कि वो बोल देता, वो भी झूठ बोल देता, लेकिन एक जगह वो फेल हो जाता, एक जगह जब वो सोता और उसका नाम पुकारा जाता, उठ के बैठ जाता, वहां तो वो अपने आप को नकार नहीं सकता था, वहां अपने आप को वो दूर नहीं कर सकता था। तो वास्तविकता ये है कि धर्म हमारा स्वभाव है। एक सज्जन मिले, बोले मैं नास्तिक हूं, हमने कहा हो ही नहीं सकते, असंभव है, बिल्कुल मुश्किल है। और आपको भी कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं नास्तिक हूं, तो आप उसे जरूर कहना कि तुम नास्तिक नहीं हो सकते और सब कुछ हो सकते हो। वो कहे कैसे नहीं हो सकता, मैं नास्तिक हूं, तो उसे एक निवेदन करके पूछना कि भैया तुम नास्तिक हो, ये तो ठीक बात है, लेकिन नास्तिक का मतलब क्या होता है वो तुम्हें पता, नास्तिक का अर्थ क्या होता है वो तुम्हें मालूम, तो कहा कि वो जो भगवान को नहीं माने, जो वेदों को नहीं माने, वो बोले नहीं नहीं ये तो तुमको किसी ने झूठ बता दिया, ये मतलब नहीं है। तो बोले नास्तिक का मतलब है जो किसी अस्तित्व को स्वीकार न करे, जो किसी अस्तित्व को न माने वो नास्तिक है। अब तुम अपने आप को मानते हो कि नहीं? अब ऐसा कौन सा होगा जो कहेगा कि मैं अपने आप को नहीं मानता, मैं हूं, ये तो मानना ही पड़ेगा। और तुम अपने आप को अगर स्वीकार कर रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक हुआ नीत्से, मैंने नाम सुना है नीत्से, और वो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो उसे पूछा गया तुम भगवान को क्यों नहीं मानते, तो उसने कहा भगवान को अगर मान लूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो खो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, बढ़िया बात है, मैं खो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व बना रहेगा, बना रहे, इसलिए मैं भगवान को मानता हूं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो कहता है कि मेरा अस्तित्व बना रहे इसलिए भगवान को मानता हूं, वो उपदेश दे रहा है। इसका मतलब है कि परमात्मा को अगर तुमने मान लिया तो तुम खत्म हो जाओगे, इसका मतलब है परमात्मा को तुमने जान लिया तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी रहेगी कोई एक ही चीज, या तुम रहोगे या परमात्मा रहेगा, तुम रहोगे या भगवान रहेगा। तो नीचे कहता है कि अगर भगवान को हमने मान लिया तो मेरा क्या होगा, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, इसलिए मैं उसे नहीं मान सकता, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूं। तो अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है और फिर धर्म को नहीं मानता। धर्म किसे कहते हैं वो तुम्हें पता है, धर्म के लक्षण क्या है वो तुम्हें मालूम है, और वो अगर आप देखेंगे दशकम धर्म लक्षण, महाराजा मनु ने जो 10 लक्षण धर्म के किए हैं, आप विचार पूर्वक देखोगे तो 10ों के 10 लक्षण प्रत्येक आदमी में आपको नजर आ जाएंगे, हर इंसान में वो लक्षण कहीं ना कहीं विद्यमान होंगे। और समय आया और मौका लगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे धर्म 10 लक्षण के रूप में सबके अंदर में विद्यमान है, आप प्रयोग करके देख लेना। सामान्य रूप से धर्म सबके अंदर में रहता है, कोई भी अधार्मिक नहीं है, लेकिन जब आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, जब आप आध्यात्मिक कहलाते हैं, तब वो वही धर्म जो सामान्य रूप में था उसको विशेष रूप में प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य अग्नि, सामान्य आग सब जगह विद्यमान है, लेकिन जब रोटी बनानी होती है तब उसी सामान्य अग्नि को विशेष रूप में प्रकट करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से सामान्य धर्म सबके अंदर में सब जगह विराजमान है, लेकिन वहां उस तत्व को जानने के लिए उसी सामान्य धर्म को विशेष रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है। महात्मा जो बनना है, महात्मा बनने का अर्थ मात्र इतना है कि वो धर्म विशेष रूप में प्रकट हो जाता है, वो धर्म विशेष रूप में अवतरित हो जाता है, और वो सबके अंदर में है, बस तुम्हें भी वो उसे अवतरित करने का मौका देना है, अवसर देना है। आप अवसर दीजिए तो महात्मा आप अपने आप हो जाएंगे। आप दबाने की चेष्टा मत कीजिए, आप समाप्त करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने मन में ये मत सोचिए कि हम संसारी हैं। एक गुजरात में एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज हम क्या है, बड़े दुखी परेशान लोग हैं। हमने कहा क्यों आप दुखी परेशान क्यों हो? तो कहने लगे हम संसारी हैं। हमने कहा ये बोध ही हटा दो अपने मन से कि तुम संसारी हो। कहा नहीं आप संत हो, आप महात्मा हो। हमने कहा हम भी उतने ही संसारी हैं जितने संसारी तुम, उसी मिल में से आया हुआ कपड़ा हम भी पहनते हैं, कोई फर्क नहीं है। आश्रम में भी जो आश्रम बनते हैं, आश्रमों में भी वही ईंट लगी है जो आपके घर में लगी है, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ चिंतन का है, फर्क सिर्फ सोच का है, विचार का है। रोटी हम भी वही खाते हैं जो आप खाते हो, संतों में तुम्हारे में फर्क कहां हुआ? सिर्फ सोच का, विचार का। तो विचार से ही अगर कोई महात्मा बनता है तो आप भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? इसलिए शास्त्र प्रमाण है कि जनक जैसे व्यक्ति के वहां और परम विरक्त सुखदेव को शिष्य के रूप में भेजा जाता है, जाओ सीखो जाकर के। कितनी विचित्र और कितनी विलक्षण बात है। आप अपने आदर्श जनक को क्यों नहीं बनाते हो? आप अपना आदर्श जनक का स्मरण क्यों नहीं करते हो? आप सोचो जरा कि जिसके पास में इतनी सारी प्रवृत्तियां, इतनी सारी झंझटें, इतनी सारी मुश्किलें, राज शासन चलाना कोई सामान्य बात है, और वहां वो बैठ करके बढ़िया आराम से अष्टावक्र गीता सुन रहा हो, कितनी विलक्षण बात है। वहां बैठ करके बढ़िया बृहदारण्यक उपनिषद में और याज्ञवल्क्य के द्वारा उस आत्म तत्व का निरूपण सुन रहा हो, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अद्भुत बात है। उपनिषद सुन रहा हो, कितनी विलक्षण बात है। और न केवल सुन रहा हो बल्कि चिंतन करता है, आनंद से, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक चिंतन करता है, कितनी सहज बात है। और कैसे कर लेता है? तो नारद जी को भी ये सवाल पैदा हुआ, देवी भागवत में वर्णन आता है कि उनके मन में आया कि कैसे राज शासन चलाते हुए उनके मन में वैराग्य है, ये तो बड़ा अद्भुत है, कैसे हो सकता है ऐसा, ये नहीं हो सकता। और परमात्मा चिंतन कर लेते हैं, वो फंसते नहीं है क्या? हम यहाँ महात्मा होने के बाद में भी भगवान का चिंतन करें तो मन डोल जाता है, लेकिन वो राजा होने के बाद में भी नहीं डोलता, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा जानना चाहते हो तो तुम ही चले जाओ, पूछ लो उन्हीं से, पूछो जाकर जनक से। और मैंने सुना कि जनक गए, जनक के पास में गए, नारद जी गए, वहां पहुंचे, नारद जी ने उनका स्वागत किया, कहा देवऋषि कैसे पधारे? तो कहा कि एक शंका है, एक बात जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता? कि आप राजा होने के बाद में भी आत्मचिंतन करते रहते हैं, आपका मन कभी डोलता नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। आप परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, क्या संसार की मुश्किलें आपको परेशानी में डालती नहीं है? जनक ने कहा कि अभी तो आए हो, थोड़ा रुको, हम बाद में चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे आराम से, जल्दी क्या है। तो कहा ठीक है। तो भोजन के लिए कहा प्रसाद पाई, प्रसाद की तैयारी करवाने लिए। तो जो भोजन बनाने वाला था उसको बुलाया, कहा एक काम करना, हमारे अतिथि हैं, संत हैं, ऋषि हैं, बढ़िया भोजन बनाओ, 56 प्रकार के भोजन बनाओ, लेकिन एक काम करना, उन भोजनों में जो मीठे पदार्थ हो उनमें नमक डाल देना, जो नमकीन पदार्थ हो उनमें शक्कर डाल देना, सब्जी में शक्कर डालो, चीनी डालो, और क्या बोलते हैं, बड़ा बनाओ तो उसमें, अरे रसगुल्ला बनाओ तो उसमें नमक डाल दो, सीधी सी बात, उल्टा कर दो। कर दिया भाई। भोजन करने के लिए जब लेके गए तो अंदर पहुंचे, जहां भोजन करने के लिए आसन बनाया था वहां ऊपर नंगी तलवारें टांग दी धागे में बांध करके, जिस आसन पर बैठना था उसी पर 4-5 तलवारें झूल रही, कभी भी टूट सकते। नारद जी ने देखा तो चकित हो गए, ये क्या नाटक है। लेकिन महात्मा कह नहीं सकते, मन में तो आया कि ये तो बड़ा विचित्र नाटक, लेकिन बोले तो फिर महात्मा गिरी खत्म होती है, कि आप भी डरते हो, आपके अंदर भी भय, तो बैठ गए, लेकिन मन तो वहीं लगा है कि कहीं अगर थोड़ी भी हिली और टूटी तो सीधे सिर पर गिरेगी। भोजन आया, भोजन में मन लगेगा, बताओ, जब अगर टूटी हुई तलवारें आपको, नंगी तलवारें ऊपर नजर आए तो भोजन में मन लगेगा। वो भोजन करने बैठे कर रहे हैं, भोजन कैसा है आपको पता है कि रसगुल्ले बिल्कुल नमकीन है, सब्जी बिल्कुल मीठी है, खा रहे हैं वो, लेकिन मन वहां। जनक कहते हैं कि महाराज भोजन कैसा है? बोले बहुत बढ़िया बना, अच्छा है, सुस्वाद भोजन है, सरस है, और जल्दी जल्दी खत्म करके हाथ धो करके। और तो जनक ने कहा लगा नहीं कि आप तृप्त हैं, हमको लगता है थोड़ी सी कमी रह गई कुछ। बोले नहीं नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया, उनको लगा कहीं दोबारा ना बिठा दे, अब कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं। तो कहा नहीं नहीं आप एक काम कीजिए, वहां नहीं दूसरी जगह बैठ के थोड़ा पाइए। दोबारा बिठाया, खिलाया, बोले अरे ये तो भोजन बकवास है, कहां ये तुमने मीठा नमकीन कर दिया, नमकीन मीठा कर दिया। तो जनक जी ने कहा यही भोजन अभी आप पा रहे थे, तब इसका स्वाद आपको नहीं आया, कारण क्या था? बोले हाँ मेरा मन तो वहां था। बोले बस मेरा मन वहां रहता है और मैं संसार में पड़ा रहता हूँ, कोई परेशानी नहीं आती। इस तरह से अगर आप परमात्मा का चिंतन करते रहोगे तो संसार में रह करके भी आप सबसे बड़े महात्मा हो जाओगे। छोटा सा एक भजन और प्रेम पूर्वक से गाइए और उसके बाद भगवान से कहिए कि हम तो यहाँ ढूंढने आए थे आपको और आप कहाँ चले गए हमको छोड़ के।
बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मेरी बारी कहाँ छुपे, दर्शन दीजो शरण में लीजो दर्शन।
गाइए गाइए सब लोग, अच्छा लगे।
दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो, हम बलिहारी कहाँ छुपे, हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण। आंख मिचोली हमें न भाए, आंख मिचोली जग माया के जाल बिछाए, जग माया के जाल, रास रचा कर बंसी बजा कर रास, हो रास रचा कर बंसी बजा कर रास, धनु चरा कर प्रीत जगा कर, धनु चरा हे धनु चरा कर प्रीत जगा कर, धनु प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया नटवर हे नटवर नागर निष्ठुर छलिया नटवर नागर निष्ठुर छलिया लीला न्यारी कहाँ छुपे लीला न्यारी छुपे बांके बिहारी कृष्ण मेरी बारी कहाँ छुपे बांके बिहारी मेरी बारी सर्वव्यापक तुम अविनाशी सर्वव्यापक जल थल गगन रवि घटवासी जल थल गगन योग सुना कर रथ को चला कर योग हे योग सुना कर रथ को चला कर योग कहाँ खो गए हमको लुभा कर कहाँ हे कहाँ खो गए हमको लुभा कर कहाँ हमको लुभा कर गोविंद गोविंद मीरा गाई गोविंद हे गोविंद गोविंद मीरा गाई गोविंद मीरा गाई गणिका तारी कहाँ छुपे गणिका तारी कहाँ छुपे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे सर्वदेव भगवान की जय और
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ॐ